अनेक मार्ग में यदि कोई समझे कि हम कर्म का त्याग करके अकर्मण बन करके अपने कर्म को छोड़ करके या अपने चित्र को मलिन बनाए रखते हुए कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो आपके संसार में ऐसा कोई नहीं कर पाया है। कोई व्यर्थ का प्रयास नहीं करे, समय नष्ट करे, अपनी शक्तियों को नष्ट करे, एक रास्ता में से ही जीवन जीता है, लेकिन ऐसा कोई हो ही नहीं सकता न हुआ है कभी। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कि बस एकमात्र रास्ता यही है कि अपने शुभ कर्मों के द्वारा अपने चित्र को शुद्ध करो, निष्काम कर्मों के द्वारा जगा जगाओ और भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो, बस यही एकमात्र रास्ता है। और कहते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं करता तो मानो अपना ही विनाश करता है। अपना ही विनाश के माने यदि कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं करेगा, उत्थान नहीं करेगा, तो दिनों दिन अनुगत की तरफ चलता जाएगा, गलत रास्ता उल्टे रास्ता चलेगा तो उसका परिणाम परिणाम उसका होगा, उसका वर्णन इस श्लोक में कर देते हैं। इसमें बहुत अधिक व्याख्या की बात नहीं, केवल जो लोग इस प्रकार के आध्यात्मिक साधना नहीं करते उससे वंचित रहते हैं उन लोगों की क्या जरूरत होती है पढ़ देते हैं। वैसे असुरिया नाम के लोग ऐसे लोग भी हैं जो असुरिया नाम जहाँ पर कि सूर्य नहीं थे, अंधकार में लोग अंधे में तमका और वो तमक के अंधकार से आवृत हैं, कान से क्या विलक्षण भी वे लोग हैं, इसको छोड़कर के शरीर को छोड़कर के जाते हैं तो वैसे ही अंधकार में लोगों में पहुंचते हैं। एक एक आत्मनोजना कौन लोग जो आप अपना अपना ही विनाश करते हैं, अपना उद्धार नहीं करते, कई रास्ते नहीं करते, अपना विनाश करते हैं तो अंत अंत में जीवन में उनकी यही गति होती है। ऋषियों की भाषा जैसा कि बताया लाक्षणिक भाषा आती है, क्योंकि जो सत्य है जीवन का आध्यात्मिक रहस्य है वो लाक्षणिक भाषा से ही बताया जाता है। उसका लाक्षणिक भाषा अगर शाब्दिक अर्थ देखने लगेंगे तो सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। शाब्दिक अर्थ नहीं लाक्षणिक लक्ष्य किया जाता है दर्शन के लिए। अब जैसे इसमें कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जहाँ सूर्य नहीं है और अंधेन संसार होता वहाँ अंधकार से वो आदमी है, लेकिन इसके साथ तमस या तमसा अंधेन तथा अंधेन आत्मसा जो तमस को जो अंधकार है उससे आदमी है। तो तमस में अंधकार घोर अंधकार भी अंत लगा सकते हैं साधे कर जगह में, तो ऐसे लोग हैं जहाँ घोर अंधकार वहां जाना पड़ेगा। दूसरा उसका लक्षण करते इस प्रकार तो हो गया कि सत्य रजत और तमन तमन जो हो क्या है जहां पर न ज्ञान है और न कर्म है, ऐसी जो दशा है वो व्यक्ति को प्राप्त होगी, उसका तमोगुण बढ़ता जाएगा और तमोगुण बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो जो भी शरीर धारण करेगा जहां भी जाएगा वहां वो अज्ञान में जीवन अज्ञान ही अंधकार और उस अज्ञान में अंधकार में जीवन को उसे जीना पड़ेगा। प्रेम के अभिवेक्षण की वे लोग प्रेम के माने प्रेम मन जाना प्रेम शब्द बना है प्रयाण से, जैसे प्रयाण कर रहे मैंने चले गए प्रेम भी शब्द जो प्रयाण करने वाला है वो प्रेम है, तो जाता है यात्रा करता है निकलता है जाता है वो प्रेम। इसलिए जो जीव जब से शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है तब उसे प्रेत कहते हैं। प्रेत के माने कोई भयंकर बात नहीं, वही साधारण सा जो जीव शरीर में बात कर रहा था वही जीव जब शरीर छूटा तो बिना शरीर का जो जीव है उसे प्रेत कहते हैं। आप भाई प्रेत क्यों कह रहे हैं, उसमें एक विशेषता ये दिखाई देती है वो एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जा रहा है तो यात्रा काल है इसलिए उसका प्रेत कहते हैं। बस और कुछ रामी को चीज नहीं, उसमें प्रेम में बात है बस वो शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जा रहा है इसके माध्यम से उसे प्रेम कहते हैं। तब वो प्रेत जब एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है तो कहाँ पहुंचता है, तो पहुंचता है अंधकार में अज्ञान अंधकार में लोगों में पहुंचता है। लोग के तरफ से जब वो फिर कर्म बचना चाहिए बार बार बात आई लोग की, लोक का अर्थ ये नहीं है कि यदि पृथ्वी मंडल में ये लोक है और ऐसा ही एक गोल गोल कहीं पृथ्वी और होगी दूसरे प्रकार की वो एक दूसरा लोक होगा और फिर कहीं और ऐसी पृथ्वी होगी वहां पर एक और लोक होगा, ये कल्पना स्थूल बुद्धि वाले बाल बुद्धि के लोग बनाए गए हैं। लोग इस प्रकार से नहीं है, लोग शब्द जो है लुक धातु से बना है, लुक संस्कृत में लुक धातु अंग्रेजी में होती है एल डब्लो के लुक, लुक मैंने देखना, वैसे ही संस्कृत में ये लुक लाभ छोटे की मात्रा और काम हरण, ये लुक के माने भी देखना है, संस्कृत में लुक माने देखना धातु से, और इस लुक से बना भोजन भोजन जो है नियम दिखाई देता है ना, इसलिए लुक धातु से भोजन बन गए बन गए आंखों से देखने लगे, और आंखों से जो देखने का काम किया वो भी लुक धातु से अवलोकन लोकन अवलोकन देखना, और देखने की क्रिया भी जो लुक धातु से वो भी बन गई, और जो कुछ हमें दिखाई देता है जो कुछ हमें अनुभव में आता है वो बन गया लोक, और क्या लोचन हो गया दृष्टा, और दृश्य हो गया लोक, और लोचन के द्वारा दृश्य के द्वारा दृश्य को देखना अवलोकन हो गया, केवल अवलोकन लोचन के माने की स्थूल नेत्र ही नहीं है, लोचन के माने जो कुछ भी है अपने आप से जैसे स्वप्न में हम देखते हैं तो स्वप्न भी दिखाई देता, तो स्वप्न दृश्य है वो भी एक लोक है, और दृष्टा हम है हम दिखने वाले हैं और स्वप्न को देखते हैं स्वप्न का अवलोकन करते हैं, जैसे जागृता अवस्था में हम अपने आस पास के जगत को देखते हैं इसी प्रकार के स्वप्नावस्था में भी हम स्वप्न देखने वाले हो गए दृष्टा, और हम जो देख रहे हैं स्वप्न में उस समय वो स्वप्न जो हो गया लोक, और जो कुछ देखने की क्रिया हो रही है वो अवलोकन हो रहा है, इस प्रकार से हमारे एक्सपीरियंस अनुभव के विभिन्न क्षेत्र में जागृता अवस्था का भी अनुभव है स्वप्नावस्था का भी अनुभव है, ये जो दो प्रकार के अनुभव हम देखते हैं, तीसरे प्रकार का एक अनुभव जबकि स्वप्न भी नहीं दिखाई देता नाना तो भीन हो जाता है, तो एक प्रकार का अनुभव होगी उस समय जो हो अज्ञान मात्र को अज्ञान मात्र रहता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी अनुभव में नहीं आता, ये हम समझते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं रहा तो समझते ही नहीं, ये शिष्यता अवस्था है ऐसी अवस्था जो की होगी अनुभव का क्षेत्र है, इसी प्रकार से शरीर छोड़ने के बाद भी अनुभव के क्षेत्र है वो फिर अभियों को मन बुद्धि को जीव मन बुद्धि से अनुभव करता है, स्वर्ग का भी अनुभव करता है सुंदरमूल का अनुभव करता है, तो जो कुछ उसे दिखाई देता अनुभव में आता है वो उसका लोक उस समय होता है, शरीर छोड़ने के बाद ये जीव को पीड़ाएं होती हैं कष्ट होते हैं दुख होते हैं कई चिंता होते हैं क्लेशा भी होते हैं, तो ये भी अनुभव एक विशेष प्रकार का अनुभव का क्षेत्र है, और वो भी लोक है उसका नाम हो गया लघु, इस प्रकार के ऐसे ही जीवन में यदि गाय के पत्नी का शरीर धारण कर लिया तो वो भी पशु कृष्ण वो भी अनुभव करते हैं, उनको अनुभव कृष्ण कुछ अनुभव होता है, लेकिन जो कुछ उनको अनुभव होता है उसमें वैसा ज्ञान नहीं है जैसा कि मनुष्य को है, उतनी चेतना नहीं उतना प्रकाश नहीं, मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है और बहुत सी बातें जानता है, वो अपने पूर्व काल की बातों को इतिहास को भी जानता है दूर की बातों को भी जानता है, लेकिन अब पशु को तो जो सामने पशु कराई पर जानता है उसे न दूर की बातें सुनने न प्राचीन काल की कोई बातों को उसे ज्ञान हो पावे, इस प्रकार से एक अंतकार में जीवन पशुओं का है, कीट पतंगों का जीवन एक प्रकार से ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उनका अंतकार में जीवन है, रात्रि में देखते हैं कि दीपक जल रहा है प्रकाश पर्व का हो रहा है पतंगे आते हैं उसके चारों तरफ मरवाते हैं, अब उनको पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं हमारा क्या परिणाम होगा मरेंगे जिएंगे बनेंगे तो बिगड़ेगा उन्हें कुछ पता नहीं, अब उनको देखो सावधानी से पता लगेगा कि कैसे अज्ञान में जीवन का कैसा अज्ञान में जीवन है और कैसे ये जीवन करेंगे, उसी की तरह संकेत करके बताते हैं कि देखो किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन नहीं किया न सत्कर्म किए न वैराग्य आया न परमात्मा चिंतन ध्यान किया उस तरह कुछ भी नहीं गए आध्यात्मिक विकास नहीं किया अशुभ कर्म करते रहे, पाप कर्म करते रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण हमारा होता रहा, अपना स्वेच्छाकारी होकर के विषय भोगों में लगे रहे, तो धीरे धीरे करके वृत्ति की जो हो मानवीय गौरव को प्रदान करने वाली जो व्यक्ति की बुद्धि है वो धीरे धीरे कुंठित होती जाती है, मंद होती जाती है, मंद होती जाती है, अंततः बुद्ध ही प्राणी बन जाता है। और ऐसे प्राणी में तमोगुण की अधिकता होती है, समस्त आपत्ति के कारण वो दशा व्यक्ति हो जाती है और उसे फिर मन शरीर प्राप्त नहीं होता, दूसरे शरीर प्रकार की सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते हैं। समाज में नाना प्रकार के मत चलते हैं, कोई कोई समझता है कि मनुष्य जो है उसके पास सही मनुष्य ही छोड़ने के बाद मनुष्य ही होगा या परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, उसको जो है अधोगति की माने वो दिल कष्ट नहीं बनेगा, पक्षी नहीं बनेगा, कई पतंग नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा। इस प्रकार की धार्मिक समाज में कुछ लोगों के मतों में इस प्रकार से व्याप्त है, लेकिन जो सनातन धर्म जिसमें कि हमारे उपनिषद है, पुराण आदि है, गीता आदि है, रामायण है, इनके जो ऋषि लोग हैं, संस्कार लोग हैं, उनका ये कथन है कि मनुष्य की उत्पत्ति की ऐसी स्थिति है वो अपना विवाह करता है तो मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करके, ईश्वर को प्राप्त करके परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है और उसका अधापतन भी हो सकता है। जैसे वो विवाह करते करते उपत्ति हो जा सकता है, ऐसे वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा तो वो धीरे धीरे करके नीचे उसका विनाश होता जाएगा, पूरी का चलता जाएगा, चल जाएगा और मनुष्य शरीर के नीचे के स्तर में पशुओं का शरीर प्राप्त हो सकता है, फिर पतंगों का शरीर प्राप्त हो सकता है, ये वृक्ष लता गुल में इनका शरीर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक प्राणी है हमें यहाँ तक घास के तिनके तक प्राण में जीवन है, वहाँ तक उसकी अनुगति हो सकती है और उनका भोग भोगने के बाद जो कुछ उसने कार्य किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं जिनके कारण उसको कुछ प्राप्त हुई, वहाँ ये भोग योनियां हैं, उनको भोगने के बाद में उसका फिर प्रक्षारण हो गया, एक प्रकार से शुद्धिकरण कुछ हुआ तो फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फिर अधिकारी हो जाता है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुनः ऊपर उठने के लिए उसके लिए अवसर मिलता है। उसने फिर से चेतना की विचार किया हम कुछ लोगों को प्राप्त करें, ईश्वर भाव को और परमात्मा भाव को प्राप्त करें तो फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता हुआ परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, रास्ता तो उस व्यक्ति के लिए खुला है। माने अपने साधन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, अधापतन हो जाए कुछ भी हो, चलते चलते अपनी यात्रा करते करते कभी ना कभी उसकी चेतना आएगी और अपने किए के ऊपर पश्चाताप होगा और वो सही रास्ते बढ़ा करके परमात्मा की तरफ बढ़ेगा और उसे प्राप्त करेगा। बस बात इतनी ही है कि कोई जीव की तरफ जाता है और कोई जीव बन जाता है, कोई बात किसी को बात जल्दी समझ में आ जाती है, रास्ता जल्दी टूट जाता है, ठीक रास्ते पर चल लेता है और किसी को रास्ता नहीं टूटता है तो उसकी अनुभूति होती है, उसकी तरफ जाकर के फिर दुखों को भोगने के बाद फिर लौट करके जो शरीर में आता है तो फिर उसका विकास होता है। इस प्रकार से विधान इस प्रकार से ये तो इसके इसके इस श्लोक से पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी संकेत मिल जाता है। आप देखते हैं कि हमारे साथ बार बार पुनर्जन्म की बात कहते रहते हैं, जीव का पुनर्जन्म तब तक होता ही रहता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। एक तो ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में बात करने वाला जीव है, वो जीव स्वास्थ्य कर्मों के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुछ लोगों को निम्न लोगों में यात्रा करता है और पुनः मन शरीर पर धारण करता है। इस प्रकार से पुनर्जीवन होता रहता है। तो जो पुनर्जीवन जो व्यक्ति का आई है ये कर्मानुमान है, ये बात बराबर आती रहती है, सभी शास्त्र में आती रहती है और इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ये बात स्वयं सिद्ध है, इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं। ये तो बहुत ही साधारण बात है कि हर मनुष्य को अपने कर्मानुसार बार बार नियम शरीर धारण करने पड़ते हैं, जन्म स्थिति करते हैं, जाना पड़ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इसके ऊपर बहुत तर्क वितर्क नहीं किया है, इसका उदाहरण देते रहे। अब रामचरित मानस पढ़ो तो उसमें देखो इसके बाद एक का पुनर्जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं धारण कर रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है, कोई धारण कर रहा है, रामचंद्र को तो पूर्व जन्म में साथ दे दिया भगवान शंकर जी ने, तो बस वो बार बार के तुम हजार बार तुम बार बार सही धारण करो और सत का सही धारण करो, जगत का सही धारण करो। इस प्रकार से शंकर ने इसके माने बार बार सही धारण करने का विधान है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। कभी कभी कुछ धर्मों में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं, उसके वर्णन वहां पर नहीं है, तो बुरे लोग शंका भी कर देते हैं जिसने देखा पुनर्जन्म। हम लोग ऐसे मूर्ता की बातें करते हैं किसने देखा पुनर्जन्म तो होता ही है, उसमें जिसको नहीं समझ पाया बस वो ऐसे समझ लो कि उसकी चेतना के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ, उसको नहीं समझ पा रहा है, बस अज्ञान के कारण से समझ में नहीं आता। नहीं, सारे विश्व भर में प्रबुद्ध लोग जिसमें हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को सब स्वीकार कर रहे हैं, केवल भारतीय लोग नहीं सारे विश्व भर में। कोई कोई लोग कहते नहीं मुसलमान नहीं मानते और ईसाई नहीं मानते, वो नहीं मानते, कहीं नहीं मानते, केवल हिंदू ही मानते। ऐसा नहीं है केवल हिंदू ही नहीं, सभी जातियों के सब लोग सारे संसार में पुनर्जन्म को मान रहे हैं। रूढ़वादी लोग भी नहीं मान, रूढ़वादी जो है जो अपने आप को कट्टर मुसलमान समझते हैं, कट्टर ईसाई समझते हैं, वो लोग भले ही न माने, बाकी सब लोग मानते हैं। अमेरिका में 100 वर्ष पहले 1881 में सोसाइटी ऑफ साइकिक स्थापित की गई, क्रिश्चियन लोगों ने स्थापित की, अंग्रेजों ने वहां के अमेरिका अंग्रेज तो उन्हीं ने स्थापित की, एक सोसाइटी बनाई और उसका उद्देश्य रखा पुनर्जन्म के जो मत है इसके ऊपर शोध कार्य करना, खोज करें कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, कैसे होता है, बस एक मात्र किसी भी उस सोसाइटी में। और सबसे अक्सर वो सोसाइटी कार्य कर रही, 100 वर्ष से अधिक हो गए, 125 वर्ष होने आ रहे, वो सोसाइटी कार्य कर रही है। और उसमें वो साधारण लोग उसमें सदस्य उसके नहीं है, सब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कितने हैं, कितने डिपार्टमेंट के वे लोग, और यूनिवर्सिटी के बाहर कोई कोई विद्वान हो जाते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट लोग बहुत से हो गए, डीवी हो गए, एडलर, जंग, फ्राइड, बहुत से लोग हो गए, वो सब उसके सदस्य रहे। साइंस के डिपार्टमेंट के, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो है वो यूनिवर्सिटियों के वे लोग उसके सदस्य हैं। हमारे बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से पता लगाना कि पुनर्जन्म होता कि नहीं होता, तो उनके सदस्यों में से फिर कुछ प्रेसिडेंट रहे, सेक्रेटरी रहे, उन लोगों ने जो जो भी अनुसंधान हुए, जो घटनाएं घटी, तो उनका स्मरण हुआ, या एक व्यक्ति फ्री होकर के दूसरे शरीर में जा रहा व्यक्ति, तो उसका पक्का उन्होंने परीक्षण किया, उन्होंने तरह तरह की युक्तियां निकाली, कैमरे डेवलप किए गए जिनमें भी व्यक्ति के जीव का भी थोड़ा बहुत चित्र आ सके, ऐसे कैमरे की बनाई जीव का चित्र आया। तो ऐसे जो है उन्होंने उसका भी लेकर के जो वो एक शरीर छोड़ के जीव दूसरे शरीर में जा रहा है उसके भी फोटो लिए, उन्होंने सब फोटो सहित पुस्तकें प्रकाशित की। अब ऐसी पुस्तकें जो है 50 पुस्तकें, मोटी मोटी पुस्तकें जिनमें की हजारों के पुनर्जन्म के उसमें उद्धृत हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने अनुसंधान किए उन सबका वर्णन उस पुस्तकों में है। यदि कोई किसी को पता न हो कि सोसाइटी इस प्रकार का कार्य कर रही है और सोसाइटी ने कितना अनुसंधान किया है और कितनी पुस्तकें लिखी हैं, ये सब किसी को पता ही ना हो तो कहेगा कि कहीं पुनर्जन्म नहीं होता, तो अपने मन को समझता है। लेकिन जो संसार में इस ज्ञान को सब जगह फैला हुआ है, सब लोग मानते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग सब मान रहे हैं, उसके ऊपर पुस्तकें उपलब्ध हैं, अनेक प्रकार के अनुसंधान किए गए, तो फिर ये तो सिद्ध ही है कि पुनर्जन्म होता है, उसके बहस करने की क्या बात है। जो नहीं मान पाता है उसकी बुद्धि की दुर्बलता है। कभी कभी व्यक्ति इससे नहीं मानते कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत आचरण किया, पाप किया, तो हम ये कहते हैं कि देखो ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति को दंड देना पड़ेगा, व्यक्ति बदन को स्वच्छ बनेगा। तो अब वो व्यक्ति ऐसी बात को सुनता, पापी व्यक्ति यदि सुनेगा कि पुनर्जन्म होता है और दुर्गत भी होती है, दंड मिलता है, तो उसको क्या होता, उसके भीतर प्रतिक्रिया होती है, और क्या प्रतिक्रिया होती है, अरे कहां पुनर्जन्म होता, यही प्रतिक्रिया होती है। अगर कुछ पुनर्जन्म मान ले तो उसे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे अपने पापों का फल भोगना पड़े, इस बात को अपने मन को बहलाने के लिए, समझाने के लिए, अरे सब लोग विकास की बातें करते हैं, तो यदि मनोविज्ञान कौन व्यक्ति मानता है कौन नहीं मानता है उसका भी कारण उसके पीछे है। इन मनोवैज्ञानिकों ने सारे कार्य किए हुए वो कहते हैं कि जो लोग नहीं मानते उनके न मानने का मनोवैज्ञानिक कारण है उनका, इसलिए नहीं मानता। लेकिन किसी व्यक्ति के न मानने से कोई पुनर्जन्म का सिद्धांत या पुनर्जन्म की घटनाएं वो कोई न समाप्त हो जाएगी और न जो हुई है उनको हुई को न होना हो जाए तो होने वाला नहीं, जो हुआ तो हुआ, जो है तो है, जो होता है जो नियम से इस प्रकार से होता है वो अपने से रहता है, कोई मानता हो न मानता हो समझता हो न समझता हो। इसलिए ये अब यहाँ पर यह पुनर्जन्म की बात भी है जो अशुभ करके विचार करने अधोगति को प्राप्त होती है, सांस से विचार बनती ही देखे चार मनोरंजना और इस प्रकार के अपने आप का कर्मों में प्रवृत्त होना, शिक्षाचारी बनना, अधोगति कर दे जाना, अपना ही विनाश करना है, ये आत्महत्या करने के समान है। आत्मजमन जैसे अपने ही अपना विकरा का प्रयत्न ही कहीं का नाश करे, इसी प्रकार से जीव के लिए आत्महत्या क्या है, जीव अपने आप को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है, अशुभ कर्मों में पड़ता है, ये जीव मानो अपनी ही हत्या कर रहा है, अपना ही विनाश कर रहा है। गीता में भी भगवान ने छठे अध्याय में सावधान करते हुए कहा है उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, आप व्यक्ति को चाहिए कि अपना ही उत्थान स्वयं अपने जीव भाव को अपने जीव को सिद्ध करता हुआ आत्मभाव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, अपना अवसादन न करे मैंने अपना ही विनाश न करे अपने आप को प्राप्त करके करने। और वही ये कि व्यक्ति अपना ही अपना मित्र है और अपना ही अपना शत्रु है, जो व्यक्ति अपना उद्धार करता है वो अपना मित्र है और जो व्यक्ति अपना ही विनाश करता है तो अपने लिए ही शत्रु है। अपने ही साथ व्यक्ति अज्ञान के कारण शत्रुता का व्यवहार करता है विनाश कर लेता है। तो ये सावधान व्यक्ति जो भगवान ने जैसा कहा उसी बात को कहते हैं कि एक ही कारण हो जाना यहाँ तक करिए ये तीन श्लोकों में तीन बार नहीं हो आप मनोजना कितनी बात कही जो वर्तन में प्रवृत्त होने वाले हैं शिष्टाचारी हैं वे पाप और पाप के बाद दुख और अनुभूति नरक आदि के लोगों की प्राप्ति है, नियमों में उनको प्राप्त होती है उनका परिणाम दृष्टि ये वर्ण किया दिखाई। और जो व्यक्ति सही रास्ते पर विकास चलता है यहाँ से कहीं किसी को उसकी गति है और यहाँ से ऊपर जो यहाँ से व्यक्ति जो अपने स्वधर्म और सामान्य धर्म का पालन करता है वो घोषित को प्राप्त करता है, चीज प्राप्त करता है, स्वर्ग भी प्राप्त करता है, ये सब कुछ लोगों की गति हुई। और यह कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म सामान्य धर्म का पालन अनावश्यक भाव से इनकी कामना को छोड़ करके करता है तो वो व्यर्थ हो जाता है, वैराग्य आ गया। वैराग्यवान व्यक्ति उपासना और शक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यह ज्ञान और विज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर दिया तो उसकी मंजिल यात्रा पूरी हो गई, लक्ष्य का मोहन किया, शांति स्मरण को पा गया, ये सब इतना चाहिए गति उसकी तरफ निकलता दिखा दी गई उसका तीन श्लोकों में मन किया। अब बात फिर से शुरू करते हैं जो पहले ईशावास निधन उनकी जहाँ से बात होती थी और वो संक्षेप में बात कही थी अब उसका विस्तार करते हैं। यहाँ से जो आगे के श्लोक आते हैं मुख्य विषय उपनिषद का वही ये तो व्यक्ति को तैयार करने के लिए सब रूपरेखा समझ जाए कि हम उपनिषद का कहते हैं उसके लिए सब ये भूमिका एक प्रकार से है। अब उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो आत्मज्ञान कराना है। उपनिषद वो उपनिषद का क्या उद्देश्य है चल जिससे कि हमें ये पता लगे कि आत्मस्वरूप हमारा क्या है, हम अपने आप को शरीर प्राण अनुभूति समझे हुए ही ध्यान दिए हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, आत्मा ही हमें ही ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रदान करना ही एकमात्र उद्देश्य उपनिषदों का है। और वही विषय अब अगले श्लोक से प्रारंभ होता है तो आत्मा का लक्षण क्या है, क्या स्वरूप है,